का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी घाट की बात। पत्थर पर अगर वे घटनाएं लिखी रहती तो कितनी ही बातें तो मेरी हर सीढ़ी पर पढ़ सकते थे। पुरानी बातें अगर सुनना चाहते हो तो इन सीढ़ियों पर बैठो, मन लगाकर पानी की लहरों की ओर कान लगाए रहो। गुजरे जमाने की कितनी ही भूली हुई बातें तुम्हें सुनाई देंगी। मुझे और एक दिन की बात याद आ रही है, वह भी ठीक आज जैसा दिन था। कंवार के आने में दो चार दिन ही बाकी थे। सवेरे के समय शीत ऋतु की धीमी धीमी हवा सोकर उठे हुए लोगों के शरीर में नई स्फूर्ति भर रही थी। पेड़ों के पत्तों को जरा जरा सुरसुरी सी आ रही थी। गंगा ऊपर तक भरी हुई है। मेरे सिर्फ चार सीढ़ियां पानी के ऊपर जाग रही हैं। जल के साथ स्थल की गलबहियां हो रही हैं। किनारे पर आम के बाग के नीचे जहां अरुई का जंगल जम गया है, वहां तक गंगा का पानी आ पहुंचा है। मल्लाहों की जो नावें किनारे पर बबूल के पेड़ों से बंधी थीं, वे सवेरे की ज्वार के पानी पर तैरती हुई डगमग डगमग कर रही हैं। छपल जल का पानी इतरा इतरा कर उनके दोनों तरफ छप छप आघात कर रहा है। मधुर परिहास से मानो उनके कान फकड़ कर हिला हिला जाता है। भरी गंगा के ऊपर शरद की सुबह की जो धूप पड़ी है उसका रंग है कच्चे सोने जैसा। चंपा के फूल के समान धूप का ऐसा रंग और किसी भी समय नहीं दिखाई देता। बीच की रेती पर उगी हुई लंबे लंबे कांस पर धूप पड़ रही है। अभी तक कांस के फूल खिले नहीं हैं, खिलने शुरू ही हुए हैं। राम राम कहते हुए मल्लाहों ने नावें खोल दी। चिड़ियां उजाले में पैर फैलाकर आनंद से नीले आसमान में उड़ रही हैं। छोटी छोटी नावें भी वैसे ही छोटे छोटे पाल चढ़ाकर सूर्य की किरणों में चमकती निकल पड़ी हैं। वे चिड़ियों जैसी ही मालूम पड़ती हैं, मानो राजहंसों की तरह पानी में तैर रही हूं और आनंद में आकर दोनों अपने दोनों पंख आकाश में फैला दिए हूं। भट्टाचार्य जी नियमित समय पर पूजा के बर्तन हाथ में लिए स्नान करने आए। स्त्रियां भी एक एक दो दो करके पानी भरने आई। यह बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है। हाँ, तुम लोगों को बहुत पुरानी जरूर मालूम पड़ सकती है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कल की ही बात है। मेरे दिन तो गंगा जल के साथ खेलते खेलते बह जाते हैं। बहुत दिनों से एक जगह पड़ा पड़ा मैं ऐसा ही देख रहा हूं। इसलिए समय मुझे बहुत लंबा नहीं मालूम पड़ता। दिन की धूप और रात की छाया रोज गंगा पर पड़ती है और रोज मिट जाती है। कहीं भी उनकी छवि नहीं दिखाई देती। इसलिए यद्यपि मैं देखने में वृद्ध जैसा लगता हूं, पर हृदय मेरा हमेशा नया और हरा भरा रहता है। बरसों की पुरानी यादों की कार के भार से दबकर मेरी सूर्य किरणें मारी नहीं जाती। हाँ, कभी कभी काई का एकाध टुकड़ा किसी पुरानी याद जैसा बहकर आता और देह से लगकर फिर जल में बह जाता है। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि यह काई कुछ है ही नहीं। जहां गंगा का जल नहीं पहुंचता, वहां मेरे छेदों दरारों में जो लता घास या शैवाल अथवा पौधे उत्पन्न हुए हैं, वे ही मेरे पुराने होने के गवाह हैं। उन्हीं ने पुराने काल को प्रेम बंधन में बांधकर उसे हमेशा के लिए श्यामल, मधुर और नवीन बना रखा है। गंगा प्रतिदिन मेरे पास से एक एक सीढ़ी उतरती जा रही है और मैं भी एक एक सीढ़ी करके पुराना होता जा रहा हूं। चक्रवर्ती घराने के वह वृद्ध पुरुष जो स्नान करके राम नामी ओढ़े कांपते हुए माला जपते जपते घर को लौट रहे हैं, उनकी नानी तब इतनी सी थी। मुझे याद है उसका एक खेल था। वह रोज घी कुंवार का एक पत्ता गंगा में तैरा जाती थी। मेरी दाहिनी बांह के पास एक भंवर सा था, वहीं पर उसका पत्ता लगातार घूमा करता था और वह गागर रखकर खड़ी खड़ी उसी को देखा करती थी। कुछ समय बाद देखा कि वह लड़की बड़ी हो गई और अपनी एक लड़की को साथ लेकर पानी भरने आई। उसके बाद वह लड़की भी फिर बड़ी हो गई। वह अपने साथ की लड़कियों के पानी उछालकर उधम मचाने पर उन्हें डांटती और भले मानसों जैसा आचरण करने की शिक्षा देती। तब मुझे वही घी कुंवार के पत्ते की नाव बहाने की बात याद आती और बड़ा आश्चर्य होता। जो बात कहना चाहता हूं वह आती ही नहीं। एक बात उठाता हूं तब तक जल से दूसरी बात बह आती है। बातें आती हैं, चली जाती हैं, उन्हें रोककर नहीं रखा जा सकता। एक एक कहानी उस घी कुंवार की नाव की तरह भंवर में पड़कर बिना आराम किए लौट लौट आती है। इसी तरह आज एक कहानी अपना भार लेकर मेरे आसपास घूम फिर रही है, अब डूबी की अब डूबी। उस पत्ते की तरह ही वह छोटी सी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। खेल के दो फूल हैं, उसे डूबे देखकर कोमल हृदय बालिका सिर्फ एक लंबी सांस खींचकर घर लौट जाएगी। मंदिर के पास जहां वह गुसाइयों की गौशाला का बांस का घेरा देख रहे हो, वहां एक बबूल का पेड़ था। उसके नीचे हफ्ते में एक रोज हाट लगती थी। तब गुसाइयों का वहां घर द्वार नहीं बना था, जहां अभी उनका चंडी मंडप है वहां सिर्फ एक फूस की झोपड़ी थी। वह बरगद का पेड़ जो आज मेरी पसलियों में हाथ फैलाकर जटिल और लंबी कठोर उंगलियों जैसी अपनी जड़ों से मेरे पत्थर दिल को मुट्ठी में दबाए हुए है, तब इतना छोटा सा पौधा था। अपनी हरी हरी पत्तियों के लिए सिर उठाकर खड़ा ही हो रहा था। धूप पड़ने पर उसकी उन पत्तियों की छांह मेरे ऊपर सारा दिन खेला करती। उसकी नई जड़ें बच्चों की उंगलियों की तरह मेरी छाती के पास कुल बुलाया करती। कोई इसकी एक पत्ती भी तोड़ता तो मुझे पीड़ा होती। मेरी उम्र यद्यपि काफी हो चुकी थी, फिर भी मैं सीधा था। आज मैं पीठ की रीढ़ टूट जाने से अष्टावक्र की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो गया हूं और गहरी पेट की तीन रेखाओं की तरह मेरे शरीर पर हजारों जगह दरारें भी पड़ गई हैं। मेरे भीतर दुनिया भर के मेंढक जाड़े के दिनों में लंबी नींद सोने की तैयारियां कर रहे हैं। पर उन दिनों मेरी ऐसी दशा नहीं थी। सिर्फ मेरी बाईं भुजा में बाहर की तरफ दो ईंटों की कमी थी। उस खोह में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। तड़के ही जब वह करवट बदलकर जागती और मछली की पूंछ की तरह अपनी दोहरी पूंछ को दो चार बार जल्दी जल्दी नचाकर सीटी देकर आसमान में उड़ जाती, तब मैं समझ लेता कि कुसुम के घाट पर आने का समय हो गया। जिस लड़की की बात कह रहा हूं, घाट की अन्य लड़कियां उसे कुसुम कहा करती थी। शायद कुसुम ही उसका नाम था। पानी पर जब कुसुम की छोटी सी छाया पड़ती तो मेरे मन में आता कि किसी तरह उस छाया को पकड़ लूं। उसमें कुछ ऐसी ही मिठास थी। वह जब मेरे ऊपर पैर रखती और उसके दोनों पैरों के छड़े बजने लगते, तब मेरी दरारों के घास पौधे मानो पुलकित हो उठते। कुसुम बहुत ज्यादा खेलती बतियाती हो या हंसी मजाक करती हो सो बात नहीं, फिर भी ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी जितनी भी सखी सहेलियां थी उनमें से उस जैसी कोई भी ना थी। चंचल लड़कियों का उसके बिना काम ही नहीं चलता था। कोई उसे कुसी कहती तो कोई खुशी और कोई राक्षसी। उसकी मां उसे कुसुमी कहती। जब देखो तब कुसुम पानी के किनारे ही बैठी मिलती। पानी के साथ उसके हृदय का मानो कोई गहरा नाता हो। पानी उसे बड़ा अच्छा लगता। कुछ दिन बाद कुसुम को फिर घाट पर नहीं देखा। भुवना और स्वर्णा घाट पर रोती। एक दिन सुनने में आया कि उनकी कुसी खुशी राक्षसी को कोई ससुराल ले गया है। वहां सब नए आदमी हैं, नया घर द्वार है और नया ही रास्ता और घाट है। पानी के कमल को मानो कोई जमीन पर बोने ले गया हो। धीरे धीरे कुसुम की बात एक तरह से भूल रहा था। साल भर बीत गया। घाट की लड़कियां कुसुम की बात भी ऐसी कुछ नहीं छेड़ती। एक दिन शाम के समय बहुत दिनों के परिचित पैरों की छुअन से सहसा मैं चौंक उठा। मालूम हुआ शायद कुसुम के पैर हैं। वही तो है, पर उन पैरों में अब छड़े नहीं बचते। उन पैरों में वह संगीत नहीं है। कुसुम के पैरों का स्पर्श और छड़ों की आवाज हमेशा से दोनों को एक साथ अनुभव करता आया हूं। आज अचानक उन छड़ों की आवाज न सुनकर संध्या का जल कलरव उदास सा सुनाई पड़ने लगा। आम के बाग में पत्तों को खड़खड़ाती हुई हवा हाहाकार सा करने लगी। कुसुम विधवा हो गई है। सुना है उसका पति प्रदेश में नौकरी करता था। दो एक दिन के सिवा पति से उसकी अच्छी तरह भेंट भी न हो पाई थी। चिट्ठी से वैधव्य का समाचार पाकर 8 बरस की उम्र में माथे का सिंदूर पोंछकर, शरीर के गहने उतारकर कुसुम फिर अपने गांव में इसी गंगा के किनारे लौट आई। पर उसकी सखियों में से अब यहां कोई भी नहीं रह गई। भुवना, स्वर्णा, अमला सब सास का घर संभालने चली गई। सिर्फ शारदा है, पर सुनता हूं अगहन में उसका भी ब्याह हो जाएगा। फिर कुसुम बिल्कुल अकेली ही रह जाएगी। जब वह घुटनों पर सिर रखकर मेरी सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी रहती, तब मुझे ऐसा मालूम पड़ता मानो नदी की लहरें मिलकर हाथ उठाकर उसे कुसी, खुशी, राक्षसी कहकर पुकार रही हो। बरसात शुरू होते ही गंगा जैसे देखते देखते भर उठती है। कुसुम भी वैसे ही देखते देखते प्रतिदिन सौंदर्य से, यौवन से भरने लगी। मगर उसके शांत स्वभाव, करुण चेहरे और मटमैले कपड़ों ने उसके यौवन पर छाया का एक पर्दा सा डाल दिया है कि उसका वह खिला हुआ रूप सबके देखने में नहीं आता। इस पर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती कि कुसुम अब बड़ी हो गई है। कम से कम मेरी तो नहीं जाती। मैंने कुसुम को उस बालिका से बड़ी कभी नहीं देखा जिसे शुरू से देखता आया हूं। आज उसके छड़े तो पांव में ना थे, पर जब वह चलती तो मुझे छड़ों की आवाज जरूर सुनाई देती। इसी तरह 10 साल बीत गए। गांव के लोगों को कुछ मालूम ही न पड़ा। अपने चारों तरफ आज जैसा दिन देख रहा हूं, उस साल भी भादों के अंत में ऐसा ही एक दिन आया था। तुम्हारी परदादियों ने भी उस दिन सवेरे उठकर आज की ही तरह बाल सूर्य का मीठा उजाला देखा था। जब वह इतना लंबा घूंघट खींचकर गागर उठाकर मेरे ऊपर सवेरे के सूर्य प्रकाश को और भी प्रकाशमय करने के लिए पेड़ों में होकर ऊंची नीची सड़कों पर से बातें करती हुई चली आती थी, तब तुम्हारे आज के दिन की संभावना भी उनके मन के एक कोने में न उठती थी। आज तुम जैसे उनके बारे में नहीं सोच सकती कि तुम्हारी दादियां भी सचमुच एक दिन खेलती फिरती थी। आज का दिन जैसा सत्य है, जैसा जीता जागता है, वह दिन भी ऐसा ही सत्य था। तुम्हारी तरह करुण हृदय लेकर सुख में दुख में वह भी तुम्हारी ही तरह डगमगाती हुई झूली है। वैसे ही आज के शरद का यह दिन उनके बगैर, उनके सुख दुख की स्मृति के किंचित से रहित, आज का यह शरद ऋतु के सूर्य किरणों का आनंदपूर्ण सौंदर्य उनकी कल्पना के सामने उससे भी अधिक अदृश्य था। उस दिन भोर से ही उत्तर की पहली हवा मंद मंद बहती हुई खिले हुए बबूल के फूलों में से एक आध फूल उड़ाकर मेरे ऊपर फेंक रही थी। मेरे पत्थर पर थोड़ी थोड़ी ओस की बूंदें पड़ी हुई थीं। उस दिन सवेरे न जाने कहां से कोमल और उज्जवल चेहरे वाला, गोरे बदन और लंबे कद का एक नया सन्यासी आया और मेरे सामने वाले उस शिव मंदिर में ठहर गया। सन्यासी के आने की बात गांव भर में फैल गई। स्त्रियां अपनी अपनी गागर रखकर बाबा जी को प्रणाम करने के लिए मंदिर में जमा हो गई। मंदिर में भीड़ दिनों दिन बढ़ने लगी। एक तो सन्यासी, दूसरे उसका अनुपम रूप, और उस पर वह किसी की उपेक्षा नहीं करते। बच्चों को गोद में बैठा लेते और माताओं के घर के काम धंधों की बातें पूछते। स्त्री समाज में थोड़े ही दिनों में उनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हो गई। उनमें वे पूजे जाने लगे। उनके पास पुरुष भी बहुत आते। किसी दिन वे भागवत पढ़ते तो किसी दिन भगवत गीता की व्याख्या करते। किसी दिन मंदिर में बैठकर तरह तरह की शास्त्र चर्चा करते। उनके पास कोई उपदेश सुनने आता तो कोई मंत्र लेने और कोई रोग की दवा पूछने। उनके रूप का क्या पूछना, जान पड़ता मानो साक्षात महादेव ही मनुष्य का शरीर धरकर अपने मंदिर में आ पधारे हों। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी घाट की बात का पहला भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।